سلام على أما بعد، पिछले चंद दिनों से अल्लाह वालों की निशानियां बयान की जा रही हैं और पिछले 2-3 दिनों से अल्लाह वालों की एक बड़ी अहम निशानी और वो निशानी है आजिज़ी। उसके ऊपर गुफ्तगू हो रही है। आजिज़ी के बारे में हमने ये अर्ज किया कि आजिज़ी कहते हैं अपने ऐबों के ऊपर नजर रखने को, अपने ऐबों को तस्लीम करने को। और अगर कोई कमाल अल्लाह ने दिया है उसे अल्लाह की तरफ मंसूब करने। आजिज़ी से मुतालिक हमने ये भी कहा कि आजिज़ी पे रिसर्च करने वाले कुछ प्रोफेसर ने आजिज़ी से मुतालिक बड़ी अहम तहकीक की और उसमें एक बात यह कहा कि आजिज़ी करने वाला शख्स जो है वो हर दिल अजीज हो जाता है, हर एक को आजिज बनना पसंद है और हर एक जो है वो अक्कड़ वाला बंदा लड़ाई झगड़े करने वाले बंदे से भागता है। हत्ता कि अगर खुद भी मुतकब्बिर है, अक्कड़ है, लड़ाई है, झगड़े की आदत है, मगर पसंद वही होगा जो ऐसा नहीं होगा, आजिज होगा। आज की इस मजलिस में भी आजिज से मुताल्लिक एक थोड़ी सी और गुफ्तगू करनी जरूरी है। इसकी वजह यह है कि आजिज़ी जो है वो सिर्फ ये नहीं कि अल्लाह वालों की बड़ी निशान, ये एक ऐसा अमल है कि कुरान पाक में अल्लाह ने इसे ही अल्लाह के बंदों की निशानी बयान किया। वइबादुर रहमान, रहमान के बंदे तो वो है الذين يمشون على الارض هونا, जो जमीन पर आजिज़ी के साथ चलते हैं। तो अगर इसको और तरह से देखा जाए इस आयत मुबारक को, तो इसका मतलब ये है कि जिसने आजिज़ी हासिल नहीं की वो अल्लाह का बंदा ही नहीं है। अल्लाह इसी तरह इस आजिज़ी से मुतालिक हजरत सिद्दीक के अकबर रजी अल्लाह अन्हु का मशहूर कौल है और वो फरमाते थे कि पाक है वो जात जिसने अपने आप तक पहुंचने के लिए आजिज़ी के अलावा कोई और रास्ता ही नहीं रखा। तो जब तक आजिज़ी नहीं तब तक अल्लाह की तरफ रास्ता ही नहीं। इस तरह मशायख का कौल है कि जिसकी पसंदीदगी की नजर अपने ऊपर पड़ गई, जिसने अपने आप को पसंदीदगी की नजर से देखा, जिसकी पसंदीदगी की नजर अपने ऊपर पड़ गई उस पर से अल्लाह की पसंदीदगी की नजर हट गई। तो बड़ा अहम मामला है, इंसान के ईमान का मामला है, इंसान की आखिरत का मामला है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि वो शख्स तो जन्नत में ही नहीं जाए जिसके दिल में इतना सराय के दाने के बराबर भी तकब्बुर हुआ। तो दिल में आजिज़ी पैदा करना लाजिम काम है। ये अल्लाह वालों की तो बड़ी निशानी है पर ये हर मोमिन के लिए जरूरी है। इसलिए अपने इस बातनी मर्ज, इसको तकब्बुर कहते हैं, उसका इलाज करवाना जरूरी है। खानकाहों में भी असल मकसद जो है सालकीन का शेख के पास आना, सबसे बड़ा मकसद वो यही है कि सालिक में आजिज़ी आ जाए। हजरत अकदस्तानवी रहमतुल्लाह अलैह से हजरत सैयद सुलेमान नदवी रहमतुल्लाह अलैह ने सवाल किया कि हजरत ये तसव्वुफ क्या है। हजरत ने बहुत ही मुख्तसर जवाब दिया, मुख्तसर और जामे जवाब दिया कि तसव्वुफ अपनी मैं को मिटाने का दूसरा नाम। यानी ये जो रिलेशनशिप है ना शेख और मुरीद का, इस ताल्लुक का मकसद यही है। जो सालिक है जो इस्लाह का ताल्लुक कायम करता है, उसके बातिन में आजजी आ जाए। इस उम्मत के एक बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत शिबली रहमतुल्लाह, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह के बड़े खुलफा में से। और हजरत शिबली रहमतुल्लाह अलैह पहले गवर्नर हुआ करते थे, बहुत बड़े सियासी ओहदे पे थे। एक इलाका है निहावन, उसके गवर्नर होते थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शौक डाला कि जी अल्लाह वाला बनना है, और दिल में ये बात भी आई कि यहाँ गवर्नर बनते बनते शायद ना बन सकूं, तो अपने इस बड़े ओहदे को छोड़ दिया और हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह की सोहबत में पहुंच गए। तो आम तो जहन यही कहता है कि क्योंकि गवर्नर थे, पूरी दुनिया में मशहूर थे या पूरे इलाके में मशहूर थे, तो जब हजरत के पास आए होंगे तो हजरत ने तो बहुत ही उनका इकराम भी किया होगा, गले से लगाया होगा, और जितने मुरीदीन हैं उनमें बड़ा मुमताज करके बिठाया होगा कि देखो बड़ी कुर्बानी दे के आया, अपनी गवर्नरी छोड़ के और अल्लाह वाला बनने के लिए आया। मगर हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह ने जब देखा कि ये आए हैं, तो उनको सबसे पहले तो कहा कि जी खान कहाँ में, एक जगह है जहां गंधक पड़ी हुई है, गंधक में बड़ी बदबू होती है। आपने फरमाया कि वहां उसको संभालो, उसकी सफाई का काम, उसका सारा ख्याल रखना जो है वो आपके जिम्मे है। तो कहां गवर्नर और कहां इतने मुलाजमीन और कहाँ इतनी ठाट बाट और कहाँ बेहतरीन कपड़े पहनना और बेहतरीन खाना खाना और कहाँ गंदक जैसी बदबूदार जगह पे जो है सफाइयां करना। तो बड़ा मुश्किल लगा, हजरत ने फरमाया नहीं, साल पूरा तो यहां गुजारना। अब साल मुकम्मल होने का इतना इंतजार कर रहे थे कि ये इतनी मुश्किल वक्त यहाँ गुजर रहा है, मगर डटे हुए थे कि ये हजरत के पास आए अल्लाह वाला बनने के लिए। हजरत ने वजायफ भी नहीं बताए और भी कोई चीज नहीं, बस गंदक में डाल दिया, कोई बू हर जगह, बस फरमाया कि इसकी सफाई आपके जिम्मे है। साल पूरा जब मुकम्मल हुआ तो आप हजरत के पास चले ही गए। हजरत आपने फरमाया था कि एक साल यहाँ गुजारना, तो साल मुकम्मल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, अब बताए क्या करना है। हजरत ने फरमाया अच्छा आप गिन रहे थे कि कितना वक्त गुजर गया है, सालों लगा दे। बड़े परेशान, अल्लाह अल्लाह करते हुए ये साल गुजरा। हजरत ने फिर साल और लगवा दिया यार, मगर मकसद एक और था। मकसद ये था कि अंदर की मैं मर जाए, आजजी, पूरा बंदा जो है वो बिल्कुल झुक जाए, ये मकसद है अल्लाह वाला, इसके बगैर बन नहीं सकता। इसीलिए नबी अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने जमीन पर चलती फिरती कोई लाश देखनी हो ना, वो अबू कहाबा के बेटे अबू बकर को देख। कि जब तक इंसान आजजी में कमाल नहीं पाया, पूरी तरह से झुक नहीं जाएगा, तब तक अल्लाह का कुर्ब मुमकिन नहीं। साल पूरा फिर लगा, अब साल जब लगाया तबीयत भी बन गई थी, और अब जाके हजरत से निकाह होने साल फिर और लग जाता, तो बड़े ही बस अल्लाह के ऊपर छोड़ दिया। तो साल गुजरा और साल गुजरने के कुछ अरसे बाद जो है हजरत ने बुला लिया। तो यही समझ रहे थे कि अब हजरत कुछ मजलिस में बैठने की इजाजत देंगे, कुछ वज़ाइफ, कुछ जिक्र अस्कार, यही सुनना था कि ये करना होता है, गंदक में थोड़ी को बैठना होता है जाके। तो 2 साल इतनी मुश्किल में गुजारे और वापस आए इस उम्मीद पे कि अब हजरत की मजलिस में बैठूंगा, कुछ दीन सीखूंगा, कुछ दीन की बात, कुछ जिक्र अस्कार वज़ाए। तो जब हजरत के पास आए तो हजरत ने फरमाया कि आप तो गवर्नर थे, और इस ओहदे पे जब इंसान दीन से दूर होता है तो बहुत सारी ज्यादतियां हो जाती हैं, अपनों पे नवाजिशें होती हैं और गैरों के साथ बेजा ज्यादती भी हो जाती। तो बैठ के लिस्ट बनाए कि किसके साथ कितनी ज्यादती की है, और उनके पास जाके माफी मांगे और हुकूक माफ करवाएं। एक लंबी चौड़ी लिस्ट बन गई थी जिन लोगों के साथ ज्यादती की थी, और ये लंबी चौड़ी लिस्ट जो है उस लिस्ट को पूरा करके और फिर उस लिस्ट के तमाम लोगों से हुकूक माफ करवाते थे। अब कभी किसी के पास जा रहे हैं तो कोई तो देखता कि जी हमारे पुराने गवर्नर साहब हैं, तो वो तो कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपको माफी मांगने की जरूरत भी नहीं थी। मगर कभी कभी ऐसा बंदा आ जाता, वो कहता कि नहीं जी माफ नहीं करता, उन्हें बड़ी ज्यादती की है, तो ये कर ले तो वो कर ले। तो बड़ी मुश्किल लगी ये हुकूक माफ करवाने में, 2 साल और लग गए और बड़ा तकलीफ देह मरहला था। और तकलीफ देह इसलिए था कि हर उस बंदे के पास जाके कबूल करना था कि जी मैंने ये गलतियां की हैं आपके साथ और मैंने ये ज्यादती आपके साथ की है। मुश्किल काम। मगर हजरत ने फरमाया कि जब तक ये नहीं करोगे इस रास्ते में आगे नहीं बढ़ सकते। 2 साल बाद मुकम्मल हुए और हजरत को आके बताया कि जी जिनकी लिस्ट में नाम लिखे थे, जो याद था कि जिसके साथ ज्यादती की है उसके हुकूक अदा कर दी। अब फरमाए हजरत कि क्या हुक्म है। अब यही उम्मीद थी कि अब तो 4 साल हो गए हैं। अरे फरमाया कि जी गवर्नर है और गवर्नर होने के जरासीम जाते नहीं है, बड़ापन है ना, खत्म नहीं हो, उसको खत्म करने के लिए बड़ा काम कुछ करना पड़ता है। तो प्याला पकड़े और भीख मांगना शुरू करें। गवर्नर साहब जो है रास्तों पे खड़े होके चलने वालों से भीख मांग रहे हैं, सीधे हजरत नहीं है। अल्लाह, साल पूरा भीख मांगते रहे। भीख मांगने से बढ़ के जिल्लत वाला काम वैसे ही कोई नहीं, मगर क्योंकि कोई माजूरी नहीं थी, कोई गुर्बत नजर नहीं आ रही थी, तो कई मरतबा भीख मांगते थे तो लोग आगे से बहुत ही नाराजगी का और गुस्से का इजहार करते थे कि इतना हत्ता कट्टा है क्यों भीख मांग रहा है। तो पूरा साल भीख मांगते हुए गुजरा, साल पूरा गुजरा। अब इतनी आजी आ गई थी कि अब हजरत को याद भी नहीं दिलाया कि जी साल पूरा गुजर गया है भीख मांगते, मगर हजरत को बहुत अच्छी तरह से याद, हजरत ने उनको बुलाया। और फिर इन्होंने ये सुलूक को कि जो दूसरे आमाल हैं, जिक्र मामूला शेह सो, तो ये चीजें इख्तियार, इस आजजी आने पे अल्लाह ने इतनी इनायत की कि आपके बारे में आता है कि आपकी अल्लाह से मोहब्बत ऐसी हो गई कि आपके सामने जब कोई अल्लाह का नाम लेता आप मोहब्बत में इतने सरशार हो जाते हैं कि अपनी जेब में से मीठा निकालते हैं और उसके मुंह में डाल देते हैं। किसी ने पूछा कि हजरत आप ये क्या करते हैं, फरमाया क्यों ना भर दूं उस शख्स का मुंह मीठे से जो मेरे महबूब का नाम लेता है। अल्लाह का कुर्बान आजिज़ी पे ही मुनहसिर, और खानकाहों में सबसे अहम काम यही सिखाया जाता है कि इंसान आजिज़ी अख्तियार करे। अल्लाह ताला हमें ये नेमत नसीब फरमाए। आखिर दावाना सैयद सलीम اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء. وصلى الله تعالى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم
وعليكم
السلام.
السلام ورحمة الله وبركاته، جزاكم الله.